पृष्ठ संख्या 211, अध्याय 12, भारतीय वास्तुकला। धर्म और कला संस्कृति की अभिव्यक्ति के दो भिन्न माध्यम हैं, इसलिए संस्कृति का विकास उनमें से किसी में भी समान रूप से खोजा जा सकता है, क्योंकि किसी प्रजाति की चेतना में जैविक रूप से परिवर्तन होता है और यह उसके सभी अंगों में एक साथ होता है। संभवतः कला धर्म की तुलना में परिवर्तन का ज्यादा संवेदनशील संकेतक है। धर्म स्वभाव में ज्यादा व्यक्तिपरक होता है, जबकि कला केवल वस्तुपरक रूप में रहती है। इसलिए हिंदू कला में इस्लाम के प्रभाव का आकलन करते समय उन रचनात्मक प्रभावों को समझना जरूरी है जो सभ्यता को गढ़ते हैं और उनकी सौंदर्यात्मक जरूरतों और मूल्यों को आकार देते हैं। सभ्यता अनुभवों का संस्थापन है, जो कि मनुष्य प्रकृति के साथ समरसता और टकराव दोनों में काम करते हुए प्राप्त करता है। प्रकृति के विरुद्ध किए जा रहे संघर्ष के लिए जो प्रयास सभी के द्वारा किया जाता है, वह ऐसा ताना बाना है जिससे सभ्यता का वस्त्र बुना जाता है। किसी विशेष सभ्यता का चरित्र मनुष्यों के स्वभाव और प्रकृति पर तो निर्भर रहता है, इसके अलावा वह उसके पर्यावरण की प्रकृति तथा उस पर्यावरण तथा मनुष्य की आपसी और गतिमान अंतःक्रिया पर निर्भर रहता है। मनुष्य सभी जगह बुनियादी रूप से समान होते हैं, उन सब में समान मनोवैज्ञानिक क्षमताएं होती हैं। वे एक जैसी सहज वृत्ति आवेगों और भावनाओं से प्रभावित होते हैं और वे सभी बौद्धिक रूप से समान ढंग से काम करते हैं। लेकिन यद्यपि मनुष्य अनिवार्य रूप से समान होते हैं, किंतु उनकी भावनाओं, बुद्धि और संकल्प शक्ति में बहुत अंतर होता है। लंबे समय तक समान वातावरण में साथ रहने पर विभिन्न समूहों में भिन्न प्रकार का चरित्र और मानसिकता विकसित होने की प्रवृत्ति होती है, जिससे एक समुदाय दूसरे समुदाय से अलग दिखता है। इस प्रकार होता है कि मानव स्वभाव से एकरूपता होने के बावजूद विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां उत्पन्न होती हैं। यद्यपि सहज वृत्ति वही रहती है, किंतु वह अलग अलग प्रकार से उत्तेजना प्राप्त करती है। भावनात्मक ऊर्जा का प्रवाह अलग अलग रास्ते अपनाता है, संवेगों के भिन्न समूहों से मनोभाव रूप ग्रहण करते हैं। सोच और विचार के अलग अलग तत्वों का बुद्धि क्रियाशील होती है और मस्तिष्क के संकल्प पात्मक और प्रभावी पहलुओं के आपसी रिश्ते इतने अलग अलग होते हैं कि वे एक से होने पर भी एकदम भिन्न दृष्टिकोण और व्यवहारों को जन्म देते हैं। अलग अलग समूह अलग अलग प्रकार से अपने अनुभवों को समायोजित करते हैं और जीवन के प्रति भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। और यद्यपि कोई भी दो व्यक्ति एक समुदाय में समान हो सकते हैं, पर हर समुदाय की संस्थाएं और आदर्श दूसरे से भिन्न होते हैं। इस प्रकार बनने वाली हर सभ्यता परिवर्तन के चक्र से होकर गुजरती है। वह ऐसी निश्चित किंतु अचेतन प्रवृत्तियों से प्रारंभ होती है जो वह अपने जीवन में हासिल करने की इच्छा रखती है। वह तब उच्चतम विस्तार हासिल करती है जब उसकी क्षमताएं परिपक्व हो जाती है और उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत संगत रूप से हासिल हो जाती है। इसके बाद एक ढलान वाला क्रम शुरू होता है। मूल आवेग खत्म हो जाता है और या तो सभ्यता का पतन होता है, या वह मृत हो जाती है, या नए आवेगों के उभरने से उसमें नया जीवन आ जाता है। यह आवेग, चाहे वह समाजशास्त्री हो या बौद्धिक हो, भीतर से भी आ सकता है और बाहर से भी। नई सभ्यता का चरित्र इस नए आवेग की शक्ति के आधार पर तय होगा और यह ऐसा जोरदार हो सकता है कि वह पुरानी सभ्यता में क्रांति पैदा कर देगा या वह उसमें केवल संशोधन कर देगा। बालकन प्रायद्वीप का इतिहास यहाँ दिए गए सिद्धांतों का सबसे सटीक उदाहरण है। एजियन लोग जो मूल रूप से वहाँ बसे हुए थे, उन्हें अपनी संस्कृति के कई चरणों से होकर गुजरने में 2000 साल लगे और फिर उन्होंने एक अत्यंत विशिष्ट सभ्यता विकसित की, जिसके भव्य स्मारक मेकेना, टीरियंस और क्रीट में देखे जा सकते हैं। जब उन्होंने अपनी उपलब्धियों का चरम बिंदु प्राप्त कर लिया तो यूनानी प्रजाति ने बाल्कन के दर्रों से घुसकर उनके विकास को समाप्त कर दिया। इसके बाद यूनानी सभ्यता के मार्ग पर चल पड़े और प्रजातियों के सम्मिश्रण से एथेंस और स्पार्टा तथा यूनान के नगर राज्य उत्पन्न हुए। आत्मसात करने की प्रक्रिया पूरी होने में कई सौ साल लगे और फिर एक नई संस्कृति का उदय हुआ, जो जहां तक एथेंस का संबंध है, पेरिक्लियन युग में शिखर पर थी। इसके बाद हेलेनिज्म का उदय हुआ, ऐसी संस्कृति का उदय जो मेकनी सभ्यता से उतनी ही अलग थी जितनी कि विश्व की कोई और सभ्यता। यद्यपि हेलेनिज्म हेलास की सीमा के बाहर भी फैली और एक विश्व संस्कृति हो गई, यूनान की सभ्यता मरणासन्न हो गई। बाद में उसी भूमि पर बाइजेंटाइन नाम की दूसरी सभ्यता उत्थान और पतन के चक्र से होकर गुजरी और भविष्य उसी मंच पर नई यूनानी नस्ल का उत्थान और पतन का नाटक देखने वाला है। एशियन, हेलेनिक, हेलेनिस्टिक, बाइजेंटाइन और आधुनिक यूनानी सभ्यताएं एक के बाद एक आई, फिर भी हर कोई दूसरी सभ्यता से बुनियादी रूप से भिन्न थी। यूनान विश्व इतिहास का सार है, क्योंकि मानवता एक सागर के समान है जिसमें वायु और चंद्रमा और अंतरिक्ष की ताकतों के प्रभाव से तरंगे उठती हैं और जैसे जैसे वे आगे की यात्रा करती हैं वे आकार और गति में बढ़ती जाती हैं। एक क्षण के लिए उनके शिखर पर प्रकाश और फव्वारे और जादुई दृश्यों की किरणा दिखती है और फिर क्रमशः वे गिरने लगता है और फिर धीमा हो जाता है और अंत में वह स्थिर हो जाता है और सागर की उस गहन प्रशांति में विलुप्त हो जाता है जहां से वह उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार मानव जीवन की प्रक्रिया जारी रहती है। भारत ने विश्व की प्रक्रिया में क्या भूमिका अदा की और कैसे उसकी सभ्यता ने अत्यंत विविध मार्गों की तलाश करने के लिए और मानव अनुभव की अत्यंत गूढ़ गहराइयों को स्वर देने के लिए मानवता के युगों लंबे प्रयासों के अंतर्गत अपने को आकार दिया। कैसे भारतीय मानस ने सत्य को समझने की कामना की और उसकी कला और संस्कृति को प्रकाशित करने में कौन सी अंतर्दृष्टि और दृष्टि ने मदद की। हिंदू मस्तिष्क को समझने के लिए उसके वातावरण को समझना जरूरी है। वार्डे फाउलर ने एशिया और यूरोप में इंडो जर्मन प्रजातियों में बहुत अंतर देखा और उसका कारण उस भौगोलिक स्थिति में तलाशा है जहाँ आर्य कबीलों ने प्रवेश किया। यूनानी और इटलीवासी उन छोटी नदी घाटियों में बसे जो पर्वतों और समुद्रों द्वारा अलग अलग थी और ईरानी तथा भारतीय लोग असीमित और अनंत विस्तीर्ण मैदानों में बसे, जबकि यूनानी और इटलीवासियों ने छोटे नगर राज्य बनाए जहां जीवन गहन था और समुदाय के बंधन निकट थे। ईरानी और भारतीय ढीले ढाले रूप से जुड़े हुए मुक्त और सहज ऐसे कबीलाई संगठनों में फैले जिन पर निरंकुश शासक राज्य करता था। रविन्द्रनाथ ठाकुर के अनुसार यूरोपीय संस्कृति उसकी राष्ट्रीयताओं के भयानक विद्वेष, उसकी घरों और व्यक्तिगत जीवन में लगभग पूर्ण अराजकता, उसकी सामाजिक और राजनीतिक संगठनों में आश्चर्यजनक व्यवस्था और अनुशासन, विज्ञान और उद्योग में सर्वोच्च विजेता के रूप में काम करने वाली उसकी विश्लेषणात्मक बुद्धि का विशेष चरित्र की जड़ में यूरोप के शहरों को घेरने वाली वे दीवारें और खाइयां हैं जो हठीलेपन और संघर्ष, सुरक्षा और व्यवस्था के प्रतीक थे। मनुष्य के आसपास के माहौल का ऐसा प्रभाव होता है, इसलिए हिंदू पर्यावरण को समझना जरूरी है। विस्तीर्ण, सपाट, अनंत मैदान जिन्हें चौड़ी मंथर गति से बहने वाल नदियां सींचती हैं थी, श्वेत शाश्वत बर्फ से ढके ऊंची पर्वत श्रेणियां द्वारा सुदूर में सीमित होता क्षितिज या घने अभेद्य वन या दुर्गम सूनी पहाड़ियां, ऐसा है वहां की भूमि का बाहरी रूप। प्रकृति यहां भयानक किंतु सुनियंत्रित भावों में अटखेलियां करती हैं। ग्रीष्म, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु एक के बाद एक आते हैं। भूमध्य रेखा सूर्य की तेज गर्मी सभी वनस्पतियों को सुखा देती है और खुले मैदानों को नग्न तथा निर्जीव बना देती हैं। और जब मनुष्य और धरती प्यास से हाँफते रहते हैं, तब एकाएक तेजी से और व्यापक रूप से, किंतु करीब करीब निश्चित दिन तूफान और बिजली के साथ एकाएक वर्षा ऋतु आ जाती है, और पलक झपकते ही धरती का पूरा दृश्य बदल जाता है, जीवन फिर से है, ऐसी प्रचुरता और उर्वरता में फिर से जन्म लेता है, और जो पूरी तरह से विस्मयकारी होता है। इसके बाद मंद उल्लासपूर्ण शीत ऋतु शुरू होती है, जिसमें बुआई होती है, फसल पकती है और मनोहारी फसल होती है। मैदानों में अनाज के ढेर लग जाते हैं और अन्न के भंडार भरपूर हो जाते हैं। भारत का आकाश हमेशा चमकदार रहता है और इसकी रातों का सौंदर्य आश्चर्यजनक और अनिर्वचनीय होता है, क्योंकि जब सूर्य के तेजी से अस्त होने से रात प्रारंभ होती है, तब अनगिनत तारों का खामोश जुलूस अंधकार में उस रहस्यमय आसमान को भर देता है और उन लोगों के कान में अनिर्वचनीय रहस्यों को फुसफुसाता है, जो आसमान के गुंबद के नीचे पड़े हुए अपने ऊपर की अनंत विशालता को ताकते हुए उस फुसफुसाहट को सुन रहे होते हैं। दिन के बाद रात आती है, एक मौसम के बाद दूसरा मौसम आता है। वर्षा की प्रचुरता, ग्रीष्म का सूखा और जीवन का चक्र अपनी नियमित अबाध लय में घूमता रहता है। ऐसे में यदि मानव रूपी वाद्य से युग युगांतर तक बहुत स्पष्ट, अनोखा, स्वच्छ और तीखा स्वर निकलकर उसमें ऐसा संगीत जगाता रहा जो उसकी खुद की विशेष धुन से मेल खाता है, तो आश्चर्य की क्या बात है। सचमुच यदि हिंदू मस्तिष्क ने एक संस्कृति, जीवन का एक दृष्टिकोण और एक विशेष और वैयक्तिक सामाजिक प्रणाली विकसित न की होती, तो यह आश्चर्य की बात होती। भारत के करोड़ों लोग जिन झोपड़ों और गांवों में निवास करते हैं और जिन कुटियों में संत, कवि और पैगंबर रहते हैं, वे सब पेड़ पौधे के मोटे गलीचे में या घने जंगलों की गहरी घाटियों में पलते रहे हैं। जीवन की प्रातःकालीन ताजगी में उनकी आत्माओं पर प्रकृति ने जो छाप छोड़ी, उसके फल उन्हें आयु की परिपक्वता में प्राप्त हुए। हिंदू मस्तिष्क पर वनों की छाप गहरी थी। भारतीय चेतना ने समय और आकाश का और अपनी निजी सत्य का भाव विकसित किया। हिंदू के लिए सत्य ऐसे समय में काम करता है जो पूरा और निरंतर था और अपने माप में चक्रीय था, और ऐसे शून्य में काम करता है जो खालीपन से घृणा करता था, और जो कमल के कोमल तंतुओं के समान वक्रता लिए है। उसके समय और शून्य के कई पंथ थे। उसका ब्रह्मांड अनथक रूप में विचरता था और जीवन की गहनता की धड़कन उसमें थी। वह ऐसा ब्रह्मांड था जो अनंत सूक्ष्मता लिए था। उसमें असंख्य परस्पर उलझे आकार थे, जिनका न प्रारंभ था और न अंत, और फिर भी वह एक परिपूर्ण अंतरिक्ष था। इस चेतना की दूसरी विशेषता जो भारतीय सभ्यता की जय और पराजय में दिखती है, वह है उसका रहस्यवादी सहज वृत्तिवाद। यूरोप की चेतना का मुख्य बात है काम करने की इच्छा, भारत में यह है जानने की इच्छा। हरेक ने जिस बात पर खास तौर से जोर दिया है, उसने उसकी सभ्यता की वृद्धि को प्रभावित किया है। धर्म, दर्शन, कला, रीति रिवाज और संस्थाएं सभी पर उसी की छाप है, और सभी अपनी अलग अलग भाषाओं में सत्य की उस बुनियादी अवधारणा पर जोर देते हैं जिससे हिंदू चेतना बनी है। एक यदि जीवन को महत्व देता है, तो दूसरा आकार को। धार्मिक चेतना के सभी बदलाव कला की अभिव्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं, और जब भी कला रूपों में बदलाव होता है, धर्म में भी तदनुसार संशोधन हो जाता है। मानव मस्तिष्क एक एकता और एक जीव है, और वह समग्र रूप में क्रिया और प्रतिक्रिया करती है। तो फिर हिंदू धर्म ने हिंदू कला को कैसे प्रेरणा दी? हिंदू एक आध्यात्मिक अराजकतावादी होता है। उसका धर्म एकदम निजी और वैयक्तिक होता है। प्रचंड आत्म समागम ही उसकी उपासना है, जिसका तात्पर्य है संपूर्ण बाह्य जगत से पृथक होकर स्वयं को ईश्वर से एकाकार करने के रहस्यात्मक परमानंद का अनुभव। और जब आंतरिक एकात्मकता की यह दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तब वह जगत में लौट आता है और फिर से बहुलता को एकता में परिवर्तित कर देता है। वह सर्वेश्वरवादी होता है जो ईश्वर को हिरण्यगर्भ के रूप में, अर्थात रचना के स्वर्ण कीटाणु के रूप में और विराट या सभी के कुल समायोजन में देखता है। हिंदू वास्तुकला इस चेतना का ठोस रूप में वस्तुनिष्ठ करण है। वह आराध्य के रहस्य और वैभव का दोहरा प्रतीक है। मंदिर भीतर एक छोटा सा अंधकार में प्रकोष्ठ होता है, जिसके ऊपर छत और विशाल स्तंभ होते हैं जो मूर्तियों से भरे होते हैं। प्रकोष्ठ के गर्भ में प्रवेश द्वार से आगे एक मूर्ति खड़ी बैठी या झुकी होती है, जिस पर प्रकाश की किरणें सीधे नहीं पड़ती। मंदिर के मध्यम शांत रहस्यमय गर्भगृह में एक से अधिक आदमी नहीं प्रवेश कर सकते। हृदय के मंदिर में मनुष्य की आत्मा को रहस्य के सामने एकाकी खड़े होना चाहिए। बाहर मंदिर का रूप भव्य होता है, चबूतरे के ऊपर चबूतरा, आधार के ऊपर आधार, आकृतियां और मूर्तियां और वक्र अनंत अनवरतता में खड़े होते हैं। दीवारें अनगिनत खड़ी सीढ़ियों में बटी होती हैं, कहीं भी एक इंच भी रिक्त स्थान नहीं रहता और मंदिर के ऊपर एक स्तर पर दूसरा स्तर होते हुए पिरामिड या शिखर रहता है। हर स्तर आलों और आकृतियों से परिपूर्ण रहता है और हर शिखर के हर पहलू पर लघु शिखर से लज्जित रहता है। दीवारें स्तंभों के रूप में रहती हैं और हर स्तंभ स्वयं मंदिर का रूप होता है। आधार पर दिशाओं के रक्षकों के मंदिर होते हैं। स्तंभ में कई घेरे और दृश्य होते हैं, जिनमें धार्मिक दृश्य उकेरे होते हैं। स्तंभ के एक सिरे पर दूसरा सिरा है और निचले ब्रेकेटों और चौखटों के मध्य का स्थान नारी आकृतियों से भरा होता है। प्रवेश द्वार और गवाक्ष अनेक पल्लों से जड़े होते हैं, जिन पर लताएं, रेखा गणती और अन्य परंपरागत आकृतियां बनी रहती हैं। दीवार से बाहर निकले हुए ढालू छज्जे और भवन में गहरे तक उकेरी हुई गढ़ाई धरातल पर प्रकाश और छाया का आनंददायक खेल प्रस्तुत करती है। ऊंचे शिखर की खड़ी रेखाएं और मंडप की छत की क्षैतिज रेखाएं भव्यता और स्थिरता का आभास देती है। स्तंभ युक्त सभागृह के नीचे स्तंभ वाले पोर्च या मंजिले और अलंकरण की असीमित अधिकता सभी उस सत्य को प्रकट करते हैं जो सभी रूपों की भावातीत समग्रता है। सब मिलाकर मंदिर का बाहरी भाग मजबूत होता है, जो गरिमा, वैभव और भव्यता की भावना जगाता है। हिंदुओं के उस सामान्य सौंदर्य बोध की अभिव्यक्ति वास्तुकला की उन कई शैलियों में हुई जो 8वीं सदी के आरंभ से लेकर 13वीं सदी के अंत तक मुसलमानों द्वारा भारत की विजय के ठीक पहले के काल में पल्लवित होती रही है। बौद्ध काल की प्रारंभिक शैलियों से ली गई ये हिंदू शैलियां भवनों के क्षेत्रों के अनुसार तीन मुख्य भागों में विभाजित की जा सकती है, उत्तर भारतीय, दक्षिणी या चालुक्य और तीसरी दक्षिणी या द्राविड़। फिर मुख्य विभागों और उनके बीच के संक्रमणकालीन शैलियों के अंतर्गत अधीनस्थ शैलियां भी हैं। शैलियों में अंतर छत या शिखर के रूप में अंतर के कारण है। उत्तर भारतीय मंदिरों में शिखर ऊंचा होता है, जिसके बाजू धारीदार होते हैं और शिखर की ओर पतले होते जाते हैं और शीर्ष पर अमलशिला नामक विशाल गोलाकार पत्थर होता है, जिसके ऊपर कलश होता है। पूरी संरचना आड़ी रूप में और खड़ी पट्टियों या कमनियों पर और कोनों पर अत्यंत अलंकृत होती है। इस शैली के उदाहरण उड़ीसा के भुवनेश्वर के मंदिर, खजुराहो और ग्वालियर के मध्य भारतीय मंदिर और राजपुताना और गुजरात के मंदिर हैं। कभी कभी शिखर की रेखा सीधी होती है, जैसे सगया में है, और ज्यादातर शिखरों में जो एक अलंकरण होता है वह है चेहरों पर रूपांकन का दोहराव। द्राविड़ी शैली में पिरामिड के आकार की छत कई चरणों में ऊपर उठती है और उसके शीर्ष पर एक छोटा गुंबद होता है जो गोल या कई भुजाओं वाला होता है। द्राविड़ मंदिर का विमान में कई मंजिलें 15 भी हो सकती हैं। पहले हर मंजिल में कई आवासीय प्रकोष्ठ होते थे, किंतु बाद में प्रकोष्ठ केवल अलंकरण रह गए और उस प्रकार पिरामिड के आकार के शिखर में गोपुरम विकसित हुआ। दक्षिण के बाद के मंदिर इस बात में अलग है कि प्रवेश द्वार के ऊपर गोपुरम में कई प्रकोष्ठ होते हैं और कंपनी में दोहरी वक्रता होती है और कंगनी में दोहरी वक्रता होती है। इस शैली के सबसे प्राचीन उदाहरण है मामल्लपुरम में एक ही चट्टान पर बने रथ और अलोरा का कैलाश मंदिर, पट्टदकल का विरूपाक्ष मंदिर, तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर और अन्य। जबकि बाद वाली शैली के उदाहरण है मदुरा, श्रीरंगम और अन्य। चालुक्य शैली उत्तर और दक्षिणी शैलियों के बीच का संक्रमण है। अब शिखर द्राविड़ की बहुमंजिले आकार के नहीं रह गए और सीढ़ीदार होते जाते हैं, जिनमें उत्तरी शैली का लकाबार रेखा नहीं रहती और विभिन्न ऊंचाइयों के पिरामिड का रूप ले लेते हैं। गर्भगृह बहुधा सितारे के आकार की होती है और एक चौड़े चबूतरे पर उठी होती है। दीवारों के गहरे स्तरीय निचले भाग अत्यंत समृद्ध मूर्तियों से अलंकृत होते हैं और स्तंभों के मध्य में पत्थर की जाली होती है। इस शैली के मंदिर पूरे दक्खन में, मैसूर में, कनारा के जिलों में और निजाम के इलाके में नागपुर तक फैले हुए हैं। सबसे भव्य उदाहरण है मैसूर में हलेबीट के मंदिर। इस काल के हिंदू मंदिरों के विश्लेषण से उनकी वास्तु उपलब्धि का पता चलेगा। मंदिर की सामान्य योजना में एक गर्भगृह होता है जिसमें मूर्ति होती है और वह शिखर का आधार तय करता है और एक मंडप तथा उनके बीच में एक अंतराल होता है। ज्यादा विशाल मंदिरों में मंडप एक सभाकक्ष हो सकता है और फिर उसमें एक दूसरा मंडप उसके सामने होता है और मंदिर के आसपास एक छतदार वरांडा होता है। दीवारें चबूतरे और आधार में विभाजित होती हैं और उभरी हुई सीढ़ियां होती हैं। वे दो पोले खोलों में बने होते हैं। बाहरी तो तराशा हुआ होता है और भीतरी भाग चिकना होता है और अलग अलग भागों की मोटाई भिन्न होती है। पीछे का और बाजू का भाग मोटा होता है और कोने पतले होते हैं। दीवारों से घिरी जगह और कमरों के बीच का अनुपात नियमानुसार होता है। उड़ीसा के मंदिरों में यह अनुपात 4:10 और 6:10 होता है। इस अनुपात का परिणाम यह होता है कि दीवारें अत्यंत ठोस और स्थायी हो जाती हैं। हिंदू मंदिरों का प्रवेश द्वार आयताकार होता है। इसमें स्तंभों और लिंटलों का उपयोग विस्तार स्थान के लिए होता है। दरवाजों में ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात सामान्यतः 2:1 का होता है। दरवाजों के पल्लों में खड़ी आकृतियां उकेरी होती हैं, जिनमें से कुछ तो बाहर निकली हुई होती हैं और अन्य आले में होती हैं। दरवाजे की चौखटों में 3, 5 या 9 फलक होते हैं। उनकी सजावट में बेले और पत्ते, सम चतुर्भुजाकार के अलंकार या वर्ग और वृत्त, पशु, नृत्य करती मानव आकृति और अन्य आकृतियां होती हैं। प्राचीन बौद्ध, जैन और हिंदू गुफाओं में प्रवेश द्वार में बहुत सजावट होती है। आयताकार प्रवेश द्वार के ऊपर मेहराबे होती हैं, जिनके अंतश्चाप को कड़ियों के द्वारा विभाजित किया गया है और मोड़ों के मिलन बिंदु को लंबा कर दिया गया है, जिससे वह पीपल के पत्ते का आकार ग्रहण कर ले। स्तंभ, वेक्रेट और लिंटल का उपयोग हर जगह होता है और इससे हिंदू स्थापत्य का स्तंभीय चरित्र मजबूती से उजागर होता है। अधिक जगह और कमरों को आच्छादित करने के लिए छत बनाने के दो तरीके अपनाए गए हैं। पहले तरीके का सबसे आसान रूप है चार स्तंभ खड़े करके उन पर पत्थर की शहतीर रख देना और फिर खुले हिस्से को शिलापट्ट से ढक देना, किंतु यह तभी संभव है जब जगह छोटी हो, और इसलिए दूसरा कदम है वर्ग के प्रत्येक कोण पर तिकोने पत्थर रख कर कोनों को काट कर केंद्रीय स्थान के विस्तार को कम कर देना। इसके लिए एक के ऊपर एक पत्थर तब तक रखना जब तक कि जगह वांछित आकार के अनुरूप कम न हो जाए। दूसरा तरीका अष्टकोण के कोनों में स्तंभ लगा दिए जाए जिससे लिंटल को सहारा मिल सके और क्रमशः घटते हुए 36 स्तरों के द्वार एक के ऊपर एक रखकर भीतर की तरफ टोड़ा बनाकर उन पर एक गुंबद उठा देना। जरूरत होने पर अष्टकोण को 16 भुजाओं में भी विभाजित किया जाता है। गुंबद का भीतरी भाग 36 वित्तों में तराशी हुई आकृतियों से सदैव अत्यंत अलंकृत होता है। गुंबद के केंद्र से फानुस लटकता है। गुंबद का बाहरी भाग प्रतीकात्मक रूप से बनाया जाता है। विष्णु की वेदिका में एक खड़ी मूर्ति है और इसलिए उस पर शिखर बना होता है। शिव आसन पर बैठे हैं और गुंबद के समान या छत होती है तथा नारायण शयन मुद्रा में है, इसलिए छत गुंबददार छत के रूप में या उल्टे तख्ते जैसा होता है जिसमें शिरों पर मेहराबदार तिकोने होते हैं। त्रिज्या के आकार की मेहराब फन्नी के द्वारा मेहराबदार छत निर्मित करने की शैली नहीं दिखती, हालांकि इसके बारे में संभवतः जानकारी थी। उस प्रकार के निर्माण से जो पार्श्विक भार पड़ता उसके डर के कारण भवन निर्माण के ऐसे सिद्धांत को अपनाना पड़ा जिसमें केवल ऊर्ध्व भार को ही संभाला जाता था। इसमें दीवारों से पर्याप्त सहारा मिलता था और आमलक और कलश का भार शिखर के दोनों पार्श्वों को एक साथ बांधने का काम करते हैं। गुंबद और शिखर कभी भी सादे नहीं रखे जाते और समग्र धरातल को अत्यंत बारीक नक्काशी और समृद्ध मूर्तिशिल्प के ढंग मूर्तिशिल्प से ढक दिया जाता है। प्राचीन स्तूपों में और चैत्य सभागारों में दगदों के में केंद्र का आकार रखा जाता है। हिंदू स्थापत्य के स्तंभ अनंत समृद्धि और विविधता प्रदर्शित करते हैं। ये वर्गाकार पंचभुजी, छःभुजी, अष्टभुजी या 16 भुजी या गोल हो सकते हैं। उनका क्रम और उनके व्यास तथा ऊंचाई के बीच के अनुपात कठोरता से तय रहते हैं और स्तंभों की व्यवस्था भी तय रहती है। भवन के विभिन्न भाग चौकी, आधार, स्तंभदंड, स्तंभ शीर्ष और स्तंभों परिरचना और असंख्य आकृतियां वर्गाकार, अर्धवृत्ताकार, नतोदर, उन्नतोदर सभी नियम के अनुसार बनाए जाते हैं। सामान्यतः स्तंभ के भाग दीवारों से मेल खाते हैं। स्तंभों में दोहरे सिरे हो सकते हैं और ये सिरे पशुओं और घंटियों और फलों के विभिन्न आकार के हो सकते हैं और उन पर ब्रैकेट बने होते हैं जो लिंटलों को सहारा देते हैं। जिनके ऊपर छत टिकी होती है उनके टोड़ों का उपयोग ब्रैकेट आकृतियों, बहुधा गंधर्व के निचले टेननों और तोरणों के सहारे के रूप में किया जाता है। उनकी सजावट अत्यंत संपन्न और विविध होती है। लोकपालों, देवताओं और देवियों या जैनों के मामले में उनके तीर्थंकर और संतों के आले, पूजा के दृश्य, पशुओं के समूह, कमल के पत्ते आदि बने होते हैं। कपोत, उभरे ओलती या चुआव छत्र होते हैं जो बहुधा 45 अंश के कोण पर झुके होते हैं। ये नालीदार हो सकते हैं या दक्षिण में दोहरे मोड़ के रूप में हो सकते हैं। ये दीवार को मौसम से बचाते हैं और बारिश को बाहर फेंकने में सहायक होते हैं। कपोत के नीचे ब्रैकेटों के बीच के फलक अक्सर अलंकृत होते हैं और ब्रेकेटों को सुंदरता से तराशा जाता है। कढ़ाई की विविधता और अलंकरण का भड़कीलापन असाधारण है। संसार में स्थापत्य की कोई भी शैली हिंदू शैली की समृद्धि का मुकाबला नहीं कर सकती। अलंकरण में जीवित आकृतियां, वनस्पतियां और पशु का बोलबाला है और मानव आकृति को मुक्त रूप से अंकित किया गया है। वास्तव में संपूर्ण भवन सजावट से इतना भरपूर रूप से ढका होता है कि ऐसा लगता है उसका उद्देश्य ऐसी अलंकृतियां बनाना है जिसमें जीवन का स्पंदन हो। इसके बावजूद अलंकरण को ढांचे के जरूरी तत्वों को छुपाने की या समग्र एकीकृत आकार के मूल्य को कम करने की अनुमति नहीं होती। सामग्री के आधिपत्य और अधीनता के विभिन्न भागों के रिश्तों और समूहों के तत्वों के अनुपात और समरूपता के उन नियमों के द्वारा हासिल किया जाता है जो एक स्मारक की लय और एकता बनाते हैं और जो ऐसी भावना जगाते हैं जो स्थापत्य आचार्य को प्रेरित करती हैं और उस सौंदर्य लक्ष्य को अभिव्यक्ति प्रदान करती हैं जिसे वह मूल्यवान समझता है। मुस्लिम चेतना का चरित्र हिंदू चरित्र से उतना ही अलग है जितना कि संभव है। ऐसा कहा गया है कि इस्लाम एक गर्म इलाके का धर्म है, किंतु यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि इस्लाम कम वर्षा वाले इलाके में पल्लवित होता है। एक बहुत बड़ा इलाका जिसमें पूरा उत्तरी अफ्रीका जो भूमध्य रेखा के ऊपर 120 अक्षांश के उत्तर में है, अरब दक्षिण पूर्व ईरान, अरब कैस्पियन क्षेत्र और गोबी और टकला माकन के मरुथल में साल में 10 इंच से कम वर्षा होती है, जबकि एशिया माइनर, मेसोपोटामिया, उत्तरी ईरान, अफगानिस्तान, दक्षिणी साइबेरिया और पूर्वी तुर्किस्तान में 10 से 20 इंच तक वर्षा होती है। यह शुष्क क्षेत्र जिसके पश्चिमी अटलांटिक महासागर हैं और पूर्व में चीन की दीवार है, मुसलमानों का घर है। यहाँ मुसलमान निवासियों का या तो पूरी तरह अधिकार है या उनका बहुत है। इन इलाकों के बाहर उनकी संख्या बहुत है, किंतु उनके स्थान अन्य धर्मों के लोग भी हैं और संख्या में कम है, किंतु मलाया और इंडोनेशिया इसके अपवाद है। यहाँ इतिहास के ऊषा काल से वेद विद्यमान रहे हैं और अपनी संस्कृतियों के महान ताने बाने को उन्होंने निर्मित किया है। यहाँ वे महान शहर स्थित है जिन्होंने इन संस्कृतियों के निर्माण में योगदान दिया है। समर्थन और बुखारा, गजनी और हैरात, इस्फाहान, तबरीज, शिराज, बगदाद, दमिश्क, मक्का, काहिरा, ट्यूनिस और कर्डोवा, इन इलाकों का क्या चरित्र है और इसने वहाँ के निवासियों की मानसिकता पर क्या प्रभाव डाला है। सभी मुस्लिम प्रदेश एक जैसे नहीं हैं। मध्य एशिया किसी प्राचीन गड्ढे का इलाका है, ईरान एक पठार है, एशिया माइनर गहरी नदी घाटियों वाला पर्वतीय क्षेत्र है, सीरिया और हेजाज मरुस्थल और समुद्र तट है, इराक और मिस्र नदी घाटियां हैं, किंतु इन सब में एक बात समान है कि ये उपजाऊ इलाके ऐसे छोटे बड़े नखलिस्तान हैं जो वीरान रेतीले क्षेत्र से घिरे हुए हैं। उपजाऊ और बंजर पथरीले और रेतीले मरुस्थल इलाकों में बहुत ज्यादा अंतर है। चारों तरफ शुष्क विस्तार वाले अनंत भूखंड का विशाल विस्तार, ऊपर बादल विहीन आकाश, चकाचौंध करने वाले दिन और असंख्य चमकते सितारों से भरी रात, मौसमों का नियमित आना जाना, एक कठोर प्रकृति की क्रूरता और उसकी कंजूसी, वनस्पति को जीवित रखने की कठिन कोशिशें और सिंचाई करने वाली नहरों की जटिल प्रणाली को बचाने की कोशिशें और विनाश के मुश्किल से बचाए हुए बगीचे और आमोद प्रमोद के स्थान, छोटे चारागाहों और मरुस्थलों में पलता हुआ खाना बदोश जीवन और शहरों में और उपजाऊ स्थानों में गहनता से चल रहे स्थिर धंधे, ये सब इस इलाके में रहने वाले लोगों के मस्तिष्क में गहरे निशान छोड़ते हैं। सत्य की अनुभवातीत और ऊंचाई, मनुष्य और उसके कार्यों की क्षुद्रता, समय के क्षणों और शून्य के बिंदुओं के बीच का खालीपन का विस्तार, नैतिक और बौद्धिक प्रत्यक्षता की भावना, आवेग पूर्ण ऊर्जा और दुखद आलस्य का समय समय पर घटना, तार्किक और रेखागणितीय सोच की अमूर्तता, सौंदर्य बोध की अनुपस्थिति, शुद्ध विचारों के प्रति भक्ति और मूर्ति पूजा तथा बहुदेववाद के प्रति घृणा, रूप रेखाओं को देखने में स्पष्टता और सुनिश्चितता, सूक्ष्म बातों का अनंत विस्तार, प्रकृति की व्यवस्था पर एक रहस्यवादी विश्वास, दैवी इच्छा के प्रति एक शांत गरिमामय समर्पण, मुस्लिम मानसिकता के प्रारंभिक चरण में मुख्य विशेषताएं थी। बाइजेंटाइन, ईसाई, मंगोल, भारतीय या सिस्पारोनोरोमन प्रभाव उसे कुछ रंग सकते हैं और उसे विविधता पूर्ण भी बना सकते हैं, किंतु उसे पूरी तरह बदल नहीं सकते। यह चेतना धर्म, साहित्य और कला में अभिव्यक्त होती है। कट्टर एकेश्वरवाद अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णुता, अनुयायियों और विधर्मियों के बीच स्पष्ट सीमा रेखा, अनोखी परलोक विद्या, एक जन्म एक मृत्यु, कयामत के बाद शाश्वत इनाम या दंड, धार्मिक या सामाजिक पदक्रम की अनुपस्थिति, ऐसा है उसका धार्मिक पहलू। साहित्य में उसी चेतना के काव्य में अभिव्यक्ति है गजल, जिसमें एक ही विषय पर अनंत विविधताएं होती हैं, जिसमें आश्चर्यजनक चतुराई से हताश तराशे हुए शब्द और सटीक कविता का चयन किया जाता है, जिसमें ध्वनि के जरिए कविता और कविता में सूक्ष्म अंतर संबंध होता है, वैसे ही जैसे मुस्लिम रेखागणितीय अलंकरण की आकृतियां आपस में गुथी होती है। मुस्लिम कला भारतीय या अन्य किसी कला के समान धर्म और उपासना की व्यवहारिक जागृतों के अनुरूप होती है। मुस्लिम उपासक को एक ऐसा उपासना स्थल चाहिए जो सत्यता के उसकी दृष्टि का प्रतिरूप हो, वह खुली विशालता, उत्कृष्टता और पवित्रता का गरिमा प्रतीक हो, और वह एक विशाल समूह की सामूहिक प्रार्थना के लिए आश्रय स्थल का भी काम करे। उसका रूप ऐसा हो कि वह उसे एकात्म भक्ति और सत्य का सर्वव्यापी स्वरूप बताए। ये भावनाएं मस्जिद के आकार में खरी उतरती हैं। उसकी नुकीली मेहराब, विशाल गुंबद, ऊंची मीनारें, भव्य पोर्टल, स्तंभ युक्त इबादत खाना, साफ सुथरी रूपरेखा, मूर्ति शिल्प से मुक्त और कम से कम आकृतियां, पारंपरिक बेलबूटे की सजावट, परस्पर गुंथी रेखागणितीय आकृतियां और सुंदर हस्तलिपि वाले शिलालेख, बहुधा रंगीन टाइलों से ढका उसका अत्यंत आनुपातिक बाहरी भाग तथा शीतल छायादार और विस्तृत आंतरिक भाग, एक श्रद्धालु मुस्लिम आत्मा की सभी आकांक्षाओं और कामनाओं को पूरा करते हैं। मौजूदा स्थानीय स्थापत्य की शैली पर इन तत्वों का प्रभाव पड़ने से मगरिब, मिस्र, सीरिया, ईरान और तुर्की में मुस्लिम कला की विभिन्न शैलियों के इतिहास पर पड़ा। भारत की भूमि पर दो विपरीत मानसिकताओं और उसकी संस्कृतियों का जो टकराव हुआ, उसे एक संस्कृति का जन्म हुआ, जिसके धार्मिक प्रभाव के बारे में पहले ही विचार किया जा चुका है। कला में ऐसा ही विकास हुआ। हिंदू और मुस्लिम तत्वों ने मिलकर एक नए प्रकार की वास्तुकला को जन्म दिया। धार्मिक और सैनिक या सैनिक उद्देश्यों के लिए मुसलमानों के निर्मित की गई इमारतें शुद्ध रूप से मुस्लिम, सीरिया, मिस्री, ईरानी या मध्य एशियाई नहीं और न ही हिंदू इमारतें, मंदिर या महल या छतरियां शुद्ध रूप से हिंदू थी। मुस्लिम वास्तुकला की सादी कठोरता कुछ मध्यम हो गई और हिंदुओं की सौंदर्य प्रचुरता कुछ कम हो गई। कारीगरी, अलंकरण और सामान्य रूपांकन बहुत कुछ हिंदू रहे, लेकिन मेहराबों की आकृति, सादे गुंबद, चिकनी दीवारें और विशाल आंतरिक कक्ष मुस्लिम रहे। 13वीं सदी के बाद हिंदुओं और मुसलमानों ने जो इमारतें निर्मित की उनकी कलात्मक गुणवत्ता एक समान है, किंतु उनके उपयोग को ध्यान में रखते हुए उनमें अंतर है तथा शैलियां स्थानीय परंपरा और क्षेत्रीय विशेषता के अनुसार भिन्न है। फर्गुसन के अकादमिक वर्गीकरण की सभी भारतीय मुस्लिम शैलियों में दिल्ली, अजमेर, आगरा, गौड़, मालवा, गुजरात, जौनपुर और बीजापुर, चाहे स्थानीय शासक अरब, पठान, तुर्क, ईरानी, मंगोल या भारतीय रहे हों, मस्जिदों, मकबरों और महलों के गुंबदों का आकार और निर्माण तथा उनके ऊपर बने हिंदू प्रतीक, हिंदू धर्मस्थलों में बनी मेहराबे, निर्माण में हिंदूपन लिए मेहराबे, आलंकारिक और निर्माण संबंधी रूपांकन जो रेखांकित करने वाली प्रतीकात्मकता, ये सभी हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि भारतीय निर्माताओं के लिए मक्का के पैगंबर का पंथ उन अनेक पंथों में से एक है जिससे हिंदू धर्म का समन्वयात्मक चरित्र निर्मित हुआ। वे अच्छे मुसलमान हो सकते थे किंतु वे हिंदू ही थे है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्लिम वास्तुकला के कुछ तत्व नुकीले मेहराब और प्याजी गुंबद संभवतः हिंदू मूल के थे और फर्गुसन ने उस प्रक्रिया का वर्णन किया है जिसके द्वारा जैन मंदिर को मुस्लिम मस्जिद का रूप दे दिया गया। मुस्लिम सौंदर्य बोध हिंदुओं के सौंदर्य बोध से निश्चित रूप से भिन्न है। तत्वों के मूल को कितना भी महत्व दिया जाए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भारत की मध्यकालीन कला में मुस्लिम प्रभाव से प्राचीन हिंदू सौंदर्य बोध में परिवर्तन आया। सबसे पुरानी मुस्लिम निर्माण दिल्ली और अजमेर की दो मस्जिदें थीं जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 12वीं सदी के अंत में निर्मित की गई थी और इस समय के बाद मुस्लिम सेनाओं के द्वारा जीते गए हर शहर को नवीन हिंदू मुस्लिम शैली की वास्तुकला की मस्जिदों, महलों, मकबरों और अन्य इमारतों से सजाया गया। उत्तर भारत के हिंदू राज्यों के पतन और मुस्लिम सेनाओं के आक्रमण का सफलता से मुकाबला कर रहे राज्यों पर पड़ रहे निरंतर दबाव के कारण ऐसी स्थिति नहीं थी कि खर्चीली इमारतों का निर्माण किए जाएं। परिणाम यह हुआ कि हिंदू वास्तुकला के अंतिम महान स्मारकों गिरनार के वास्तुपाल और तेजपाल के मंदिरों के बाद की दो सदियों तक उत्तर भारत में कोई अत्यंत महत्वपूर्ण भवन निर्मित नहीं हुआ। 14वीं सदी में मध्य के लगभग एक प्रकार का राजनीतिक संतुलन स्थापित हो गया था। विजय का ज्वार गुजर चुका था। तुगलक साम्राज्य मोहम्मद के चमकदार किंतु दुर्भाग्यपूर्ण प्रयोगों के बाद प्रांतीय राज्यों में बिखर रहा था। राजपुताना और बुंदेलखंड के हिंदू शासक जिन्होंने कभी समर्पण नहीं किया था मौके का लाभ उठाया और आसपास के इलाके पर अधिकार करके विशाल सेनाएं और धन इकट्ठा कर लिया। उनका राजनीतिक महत्व जल्दी ही स्थापित हो गया। उन्होंने गुजरात, मालवा, जौनपुर के मुस्लिम शासकों और अपने समकक्ष माना। उनकी सीमाओं पर उन्होंने धावे किए, उसने संघर्ष किया, उनके साथ संधियां की और उन्हें दिल्ली के साम्राज्य की शक्ति के द्वारा अपने खत्म होने का अब खतरा नहीं था। आत्मविश्वास और समृद्धि फिर से आ जाने पर वे फिर से अपनी ऊर्जा कला के संरक्षण में लगाने में समर्थ हो सके और 15वीं सदी की शुरुआत में ऐसे स्मारक निर्मित करने लगे जो बाद की पीढ़ियों में सारे भारत में उनके सहधर्मियों के उदाहरण बन गए। जहां तक शैली के चुनने का प्रश्न था, उनके पास एक विकल्प यह था कि वे प्राचीन हिंदू शैली को पुनर्जीवित करें, जिसका उदाहरण उनके आसपास और बुंदेलखंड में खड़े थे, या दूसरा विकल्प यह था कि वे उस हिंदू मुस्लिम शैली को अपनाएं जिसे मुस्लिम संरक्षकों ने और हिंदू कलाकारों ने मिलकर उत्पन्न किया था। हिंदू बुद्धिमत्ता पूर्वक या अपरिहार्य रूप से दूसरे विकल्प को चुना। परिणामतः संभवतः प्राचीन परंपराओं से हटकर बनाए गए हिंदू निर्माण का सबसे पुराना उदाहरण रामपुर का मंदिर है, जो जोधपुर राज्यों के गोदवार जिले से सदर के पास है। यह मंदिर 1439 ईस्वी में मेवाड़ के राणा कुंभा के शासनकाल में धरनक नामक एक जैन व्यक्ति के द्वारा निर्मित कराया गया। यह मंदिर राणा कुंभा के प्रिय निवास स्थान कुंभलनेर के किले के सामने अरावली पर्वत श्रेणियों की एक सुंदर किंतु एकाकी घाटी में बने मंदिरों के समूहों में से एक था। यह आकार में लगभग वर्गाकार है और एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। कुछ क्षैतिज रेखाओं को छोड़कर इसमें कोई अन्य सजावट नहीं है और इस प्रकार यह सादे तल की नई भावना प्रदर्शित करता है जो हिंदू मस्तिष्क में घर कर रही थी। मंदिर में चार सभाकक्ष और 5 वेदियां हैं, बड़ी केंद्र में और अन्य 4 कोनों में। वेदियों के ऊपर गुंबद है और जिनमें से मध्य का गुंबद 3 मंजिल का है। चारों तरफ मूर्तियों के प्रकोष्ठ हैं, जिनमें एक जिनमें से हरेक के ऊपर पिरामिड के आकार की छत है। वेदिका के स्तंभ जो गुंबद को सहारा देते हैं अमर शाह की जामी मस्जिद के समान आकृति वाले हैं और गुंबद का बाहरी भाग सादा है और मुस्लिमों के समान अलंकरण विहीन है। बाहरी तल पर अलंकरण न होने पर भी फर्गुसन स्वीकार करते हैं कि मैं भारत के किसी ऐसे को नहीं जानता जो उसी दर्जे का हो और जो इतना आनंददायक प्रभाव छोड़ता हो। चित्तौड़ में राणा कुंभा के महल के जो अवशेष हैं, उनमें हिंदू छज्जों के साथ पूरे छत पर कलगी युक्त दीवार है तथा सादे और विभाजित गुंबद हैं, जो लिंटल और खंभों पर टिके हैं। उसी काल में अर्थात मुगल पूर्व काल में ग्वालियर के राणा मानसिंह द्वारा बनाया हुआ किला और महल है। मानसिंह ने 1486 ईस्वी से लेकर 1516 तक शासन किया और उसके उत्तराधिकारी विक्रमादित्य सिंह का महल 1518 में निर्मित हुआ। किले की बरादरी 45 वर्ग फुट की थी और उसकी छत 12 स्तंभों पर टिकी हुई थी। इसमें यह बात रोचक है कि व्यवहारिक कारणों से किस प्रकार हिंदू वास्तुकार को मुस्लिमों के गुंबद की नकल करने के लिए बाध्य होना पड़ा। बर्बादी की स्थिति में होने पर भी मंदिर एक भव्य इमारत है जिसमें बाहर निकलते हुए शिखर हैं, खंभे युक्त खुली बालकनियां हैं और तिरछी नोक के समान क्रेस्ट है। यह 360 फुट लंबी और 160 फुट चौड़ी है। जमीन 100 फुट ऊंची है। मुख्य प्रवेश द्वार हथियापुर 4 सुंदर स्तंभों से बना हुआ है जिन पर सुंदर गुंबद है। प्रवेश द्वार के बाजू में 2 बुजियां हैं जिनके सिरे पर सुंदर खंभों पर गुंबद है। इसके छज्जे सुंदर से तराशे गए हैं और इसकी खिड़कियां इसके बाहरी प्रभाव की सुंदरता को बढ़ाती हैं। इसके अलंकार वही भावना प्रकट करते हैं जो अकबर की इमारतों की विशेषता है। महल के भीतर 2 कलात्मक सभाकक्ष है। पहला सभाकक्ष 33 फुट वर्ग का है और उसमें दरवाजे खुलते हैं। इनमें से एक विशाल कमरे में विचित्र सी छत है जो छिद्र में पर्दे की घेराबंदी पर टिका है और उसे पंखे के सिरे वाले 16 खंभों की पंक्ति सहारा देती है। खंभों की पंक्ति के ऊपर एक छज्जा है जिसमें ढलवा रेलिंग है। पश्चिमी कमरे में 3 सुंदर मेहराबों वाला प्रवेश द्वार है जो सुंदरता से तराशे गए मजबूत स्तंभों पर टिका है। दक्षिणी कमरे की छत पर चपटी मेहराब है और दक्षिणी पश्चिमी कोने के कमरे में सेरा सैनिक मेहराबों से बनी छत है। दूसरा सभागृह कुछ बड़ा है। उसका बाजू 37 फुट का है। पूर्व की ओर का छोटा कमरा बहुधा सभी ओर है और प्रवेश खंभे युक्त है। छत पोली है और उसमें 4 अर्धवृत्त हैं। दोनों सभाकक्ष अत्यंत अलंकृत हैं। भवन का हर भाग सावधानी से निर्मित किया गया है। कार्बेल ब्रैकेट छज्जे मेहराबे और दीवारें और स्तंभ युक्त और मेहराब युक्त दोनों शैलियों का इस्तेमाल किया गया है। जब बाबर ने 1526 में ग्वालियर का भ्रमण किया तो उसने वहां के महल की बहुत प्रशंसा की और लिखा, यह 5 गुंबदों वाली इमारत है और उसके आसपास गुंबद है। हिंदुस्तान की परंपरा के अनुसार बड़े गुंबदों के हर तरफ छोटे गुंबद हैं। ये गुंबद तांबे की परतों से ढके हुए और दीवारों में हरी चित्रित टाइलें लगी हुई थी, जबकि सामने सफेद प्लास्टर था। मानसिंह के महल के से बाबर के उत्तराधिकारियों को और हिंदू निर्माणकर्ताओं को अनुकरण के कुछ बिंदु मिले। अकबर के प्रबुद्ध शासन में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के परस्पर समन्वय को बहुत महत्व मिला। फतेहपुर सिकरी की इमारतें उसी भावना की अभिव्यक्ति हैं, जो जिनसे दीन इलाही को प्रेरणा मिली थी। पंचमहल अल्लाह उपनिषद का पत्थर में अनुवाद था। उसके प्रोत्साहन में कई मंदिरों का निर्माण हुआ, जो यह बताते हैं कि हिंदू निर्माणकर्ताओं में मुस्लिम निर्माण की पद्धतियों के अधूरे कौशल में अब वह हिचक नहीं रह गई थी जो उन्होंने ग्वालियर में प्रदर्शित की थी। इन मंदिरों में वृंदावन में 3 और गोवर्धन में 1 मंदिर अकबर के समय बनाए गए थे और वृंदावन में 1 मंदिर जहांगीर के समय बनाया था। वृंदावन का गोविंद देव मंदिर अकबर के प्रसिद्ध सेनानायक और सूबेदार राजा मानसिंह कछवाह ने 1590 में बनवाया था। इमारत की योजना नुकीले है। नाभि की लंबाई और अनुप्रस्थ भाग की चौड़ाई लगभग समान है और 117 फुट और 105 फुट है। उसके मंडप के ऊपर मेहराबी छत, जिससे मेहराबे निकली हुई हैं, जो कि एक सच्चा मुस्लिम तत्व है। हालांकि स्तंभ गिर चुका है, फिर भी बाहर देखने में इमारत प्रभावशाली लगती है। प्रभावशाली कोने, बाहर निकले हुए छज्जे, आड़ी और खड़ी मिली जुली रेखाएं, चौखट और मेहराब का उपयोग, बिना अलंकरण वाला सादा लय, ये मिलकर अनोखी शक्ति और भव्यता प्रकट करते हैं। मदन मोहन का मंदिर जीर्ण स्थिति में है, मेहराबी छत गायब हो गई है और शिखर भी गायब हो गया है। मंडप का प्रवेश द्वार एक मेहराब के भीतर आयताकार बना है, जो अलंकृत है। गृह मुख की दीवार सादी है, लेकिन 2 छज्जे मेहराब के आजू बाजू में निकले हुए हैं। चापस्कंद में कोई सजावट नहीं है, सिवा बीच के कमल के। वेदिका के ऊपर का शिखर अष्टकोणीय है, जो शिखर की तरफ पतला होता गया है और एकदम सादा है। पूजा स्थल का शिखर आकार में वैसा ही है, लेकिन उसके पैनल तराशे हुए हैं और उसमें गोल और हीरे के आकार बने हैं, किंतु कोई मानव कृति नहीं है। गोपीनाथ का मंदिर अकबर के एक अधिकारी रायसील द्वारा बनवाया गया था, जो शेखावटी वंश का था। इस वंश का इतिहास रोचक है। मोकल राणा बहुत दिनों से संतानहीन था। वह शेख बुरहान के आशीर्वाद से पिता बना और वह अपने बेटे को शेख ही जी कहता था और शेखावटी वंश का पिता हो गया है। प्रत्येक लड़के के जन्म पर वह एक बकरे की बलि दी जाती है और कलमा पढ़ते हुए बच्चे पर खून छिड़का जाता है। उसे बधिया पहनाया जाता है, जो मुसलमानों के बच्चे पहनते हैं, और जब वह बधिया को उतारता है तो यह जरूरी है कि वह संत की दरगाह में उतारे, जो अभी भी अचरोल से 6 मील दूर है। 2 साल तक वह नीला चोगा और टोपी पहनता है और जीवन भर वह सुअर का मांस नहीं खाता, और ऐसा कोई भी मांस नहीं खाता जिसमें खून बचा रहता है। वह मंदिर अब नष्ट प्राय है। गोवर्धन का हरिदेव मंदिर राजा भगवान दास ने बनवाया था। 60 फुट लंबी और 20 फुट चौड़ी नाभि में 5 मेहराबे हैं, जिनके ऊपर खिड़कियां हैं। नाभि के ऊपर एक मेहराबी छत है। वृंदावन का जुलकिशोर मंदिर 1627 में निर्मित किया गया। इसकी सादी दीवारें, अलंकृत शिखर, मेहराब वाले आले, मूर्तियों की अनुपस्थिति स्पष्टतया मुस्लिम सौंदर्य की ओर इंगित करती है। बुंदेलखंड में सोनागढ़ के जैन मंदिर 16वीं और 17वीं सदी के हैं। वे कई शैलियों के हैं, किंतु उनमें मुस्लिम वास्तुकला का बहुत प्रभाव है। जो साफ दिखता है। भवन अक्सर चबूतरे पर खड़ा है और उसके ऊपर एक या ज्यादा शिखर है जिनके आसपास छतरियां बनी है। अलंकरण के भार से दबा प्राचीन शिखर दुर्लभ है और उसके स्थान पर एक आधुनिक सादा तिकोना शिखर बना है जिस पर आड़ी आकृतियां या कई प्रकार के गुंबद बने हैं। एक मंदिर पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां चलनी पड़ती है। इसका गृह मुख में मेहराबदार प्रवेश द्वार है जिस पर दो छोटी मेहराबे हैं और उसके बाजू तोरणों से सजे हैं। सभी मेहराबे नोक वाली हैं। गृहमुख के ऊपरी सिरे पर बीच में एक मेहराबी छत है और दोनों तरफ छोटे गुंबद हैं। उनके पीछे इबादत गाह के ऊपर का गुंबद है। मंदिर में एक भी तराशी गई आकृति नहीं है। अन्य मंदिरों में भी ऐसी ही विशेषताएं हैं। बराल में गाविलगढ़ के पास मुक्तागिरी के मंदिर सेनागढ़ के मंदिरों के समान ही गुंबद वाले हैं जो मुस्लिम कला के अनुकरण में हैं। सुदूर दक्षिण में मद्रास राज्य में इस्लामी शैली का प्रभाव हिंदू शासकों के असैनिक भवनों में विजयनगर और चंद्रगिरी मदुरा और तंजौर के महलों और मंडपों में दिखता है। मंदिर और अन्य धार्मिक भवन परंपरागत तरीके से बनाए जाते रहे यद्यपि उत्तर में उनकी शैली में भी नए आस्वादन में संशोधन होता रहा। हालांकि विजयनगर राज्य अपने पड़ोसी राज्यों के साथ निरंतर युद्धरत रहा तथापि ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे की संस्कृतियों का बहुत सम्मान करते थे और धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान अपने अधिक उल्लेखनीय उत्तराधिकारी मुगल सम्राटों के समान हिंदू धर्म के तरफ अपने झुकाव के लिए कुख्यात थे और आदिल शाही तथा अहमदनगर के निजाम शाही शासकों ने खुलकर मराठा सरदारों को संरक्षण दिया और प्रशासन के लिए हिंदू अधिकारियों को और अपनी सेना के लिए हिंदू सैनिकों को नियुक्त किया। अहमदनगर के निजाम शाही शासकों ने मराठी भाषा को सरकारी कामकाज की भाषा बनाकर उसे बहुत आगे बढ़ाया। विजयनगर के हिंदू शासकों ने भी इन भावनाओं को अपनाया और उन्होंने मुस्लिम सैनिकों को नियुक्त किया और मुस्लिम व्यापारियों को प्रोत्साहित किया और उनकी उपासना के लिए मस्जिद बनवाई। अपनी असैनिक वास्तुकला में उन्होंने अपने पड़ोसियों से मेहराब उधार लिए। 1565 ईस्वी में विजयनगर के पतन के पहले बनाए गए एक मंडप का चित्र फर्गुसन ने दिया है। वह कहता है कि यह उस सुंदर शैली का बढ़िया उदाहरण है जो सारा सैनी और हिंदू शैलियों के मिश्रण से पैदा होती हुई थी। कई नोकों वाली उसकी मेहराबे झुके हुए पत्थर और बिना अलंकरण वाली दीवाले इस कथन को उचित सिद्ध करने के लिए काफी हैं। पराजित विजयनगर राजवंश के उत्तराधिकारी उत्तरी अरकार जिले के चंद्रगिरी में बस गए। वहां उन्होंने अपने राजमहल बनवाए। प्रमुख महल 3 मंजिल का है और उसके और जिसके ऊपर सुंदर आकृति वाले बुर्जियां हैं। प्रत्येक मंजिल में एक स्तंभ युक्त सभागृह है जिसके खंभे मेहराबदार हैं। कोड़ों पर संगमरमर है और उन पर सपाट गुंबद है। मेहराबों वाली दीवारें ईंट की बनी है किंतु मेहराबी छत पत्थर की बनी है। मदुरा का तिरुमलाई नायक का महल 17वीं शताब्दी का है और हिंदू मुस्लिम शैली में निर्मित स्तंभ युक्त भवनों में अत्यंत भव्य इमारतें हैं। 160 फुट लंबे और 100 फुट चौड़े सहन के आसपास मुख्य कक्ष बने हैं और उनके आसपास सभी ओर अत्यधिक सुंदर मेहराबे बनी हुई हैं। मेहराबों को सहारा देने वाले स्तंभ पत्थर के हैं और 40 फुट ऊंचे हैं और वे परस्पर ईंट की लहरदार खूबसूरत मेहराबों से जुड़े हुए हैं। स्वर्गाभिलाषम शयन के पश्चिम में है। 235 फुट लंबा और 105 फुट चौड़ा यह 3 गुंबद वाली एक विशाल मस्जिद की योजना पर बना है। वास्तव में यह पूरा भवन चाहे पहले एक भव्य मस्जिद के रूप में न बना हो लेकिन एक भव्य के समान है। केंद्रीय गुंबद 17 स्तंभों पर आधारित है जो भारी मेहराबों के द्वारा परस्पर जुड़े हैं। तंजौर का महल मराठा सरदार ने शुरू किया था जिसने 17वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में अपना वंश स्थापित किया था। उसमें मदुरा के महल की व्यवस्था अपनाई गई और शैली भी वैसी ही है। उत्तर में 17वीं सदी में राजपुताना और बुंदेलखंड, उदयपुर, आमेर, दतिया, बूंदी और ओरछा के हिंदू राजाओं के राज्यों में कई बढ़िया इमारतें बनाई गईं। स्पष्टतः यह नई शैली सार्वभौमिक हो गई थी और वास्तुकला के दृष्टिकोण से हिंदुओं और मुसलमानों के द्वारा बनाई गई इमारतों के बीच में अंतर करना असंभव हो गया। इस सांस्कृतिक समन्वय का दूसरा प्रभाव हुआ हिंदुओं में मकबरों का निर्माण। इस प्रकार के निर्माण सबसे पहले कब शुरू हुए यह तय करना असंभव है, लेकिन मृतक की याद में महासती और छत्री बनना लगभग इसी काल में प्रारंभ हुई। चूंकि हिंदुओं में दफनाने की प्रथा नहीं है, इसलिए यह नई बात मुसलमानों के प्रभाव के कारण हो सकती है। आमेर का महल राजा मान सिंह द्वारा शुरू किया गया था, जो 1592 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इस महल को जय सिंह ने पूरा किया। ग्वालियर के महल के बाद राजपूतों में यह सबसे सुंदर भवन माना जाता है। यह महल एक घाटी में बना है, जिसके कारण इसका प्रभाव कुछ कम हो गया है, नहीं तो यह उसके समय में ही बने उसी प्रकार के फतेहपुर सिकरी के भवनों के विपरीत है। उसके हस्ती शिखर, मूर्ति कला और रंग तथा आयनों का उपयोग उसे बहुत मोहक बनाते हैं। 1568 में बड़ी बहल नाम का महान राजमहल 1597 में अमर सिंह के द्वारा निर्मित किया गया था। यह 5 मंजिले का पत्थर का भवन है। इसकी बाहरी हिस्सा संगमरमर से बना हुआ है, जो संगमरमर की रेखा पर चलते हुए मनोहारी ढंग से तोड़ेदार खिड़कियों और जालीदार पर्दे का रूप ले लेता है और हाथियों की ऊपरी आकृतियों से अलंकृत है। बाद के महाराणाओं ने मंडपों और छतरियां जोड़ दी। राजमहल पिझोला झील के किनारे खड़ा है, जिसके आसपास सुंदर पहाड़ियां हैं। झील में एक द्वीप पर दो और भी महल हैं। जगनिवास महल राणा जगत सिंह के द्वारा सफेद और काले संगमरमर से बनाया गया था और रुजेलेट के अनुसार मुख्य ऐतिहासिक अत्यंत मूल्यवान ऐतिहासिक भित्ति चित्रों से सजे हुए थे। बंगाली तरीके से झुके हुए कंगना, नुकीले मेहराबे, गुंबद, छतरियां, झकोरे और खुली छत इसे एक अनोखा सौंदर्य प्रदान करते हैं। जग मंदिर नाम का एक अन्य महल राणा अमर सिंह के बेटे राणा करण के द्वारा शाहजहां के लिए बनवाया गया था, जिसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर राणा के शरण ली थी। पूरा द्वीप एक परिलोक के मृग तृष्णा है, जिसमें गुंबदों और पाम वृक्षों की पंक्तियां परछाई पानी में दिखती हैं। बूंदी के महल की आयु उदयपुर के महल के समान ही है और यह वास्तु प्रभाव में उसकी बराबरी करता है। इसकी उपस्थिति बड़ी महल के समान झील के किनारे है और झील में एक छोटा सा द्वीप है, जिस पर मंदिर बने हैं। महल की खास बात यह है कि उसके झरोके बहुत अलंकृत हैं और मुख्य सभा कक्षा में लहर द्वार खंभों की दोहरी पंक्तियां हैं। बुंदेलखंड में दतिया का महल 17वीं सदी के शुरुआत में ओरछा के बुंदेला राजा वीर सिंह के द्वारा निर्मित किया गया था। यह पत्थर से वर्गाकार भवन है। आधार में मेहराबी छत का छज्जा है, जिसके ऊपर 7 मंजिली इमारत है। पहली 4 मंजिलों में विशाल कमरे हैं, जिनकी मेहराबदार छतें अनेक खंभों पर आधारित है। मध्य में एक चौकार शिखर है, जिसके सिरे पर गुंबद है। वीर सिंह देव ने ओरछा में इसी शैली का किंतु ज्यादा भिन्न आकार का एक दूसरा महल बनवाया और उसने एक चतुर्भुज मंदिर भी बनवाया। मंदिर की योजना उल्टे लेटिन क्रॉस के समान है। बरसाती पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी है। बरसाती एक मंडप का रूप ले लेता है, जो सामने से आगे निकला हुआ है, जिसके उसके पीछे सामने का मुख्य हिस्सा है, जो 4 मंजिलों का है, जिनके किनारे 2 वर्गाकार बुर्जियां हैं, जिनके ऊपर मीनारें बनी हैं। ऐसी ही 2 बुर्जियां मंदिर के दूसरी ओर बनी हैं और मंदिर की सपाट छत के मध्य में एक बड़ी गोल छतरी है, जिसके सिरे पर छोटी सा कलश है। पत्थर के जिस छज्जे पर मंदिर खड़ा है वह 50 फुट ऊंचा है। बाहरी भाग में कोई अलंकरण नहीं है, किंतु आकार और अनुपात प्रशंसनीय है। ओरछा में बना वीर सिंह देव की समाधि एक विशाल भवन है। इस वर्गाकार इमारत के दोनों तरफ दो बुर्जियां हैं और इसके ऊपर एक विशाल गुंबद है, जिसका एक हिस्सा ही उस समय मौजूदा था जब रूजवेल्ट ने वहां का भ्रमण किया था। गृह मुख के ऊपर कोई नक्काशी या सजावट नहीं है। फेसेट में मध्य में 3 मेहराबे हैं और गृह मुख में आयताकार आले हैं, जिनमें मेहराबों की आकृतियां तराशी गई हैं। समाधि अत्यंत प्रभावशाली है और अपने समय के पठान इमारतों से मेल खाती है। जयपुर में राजा सवाई जयसिंह के महल और दीघ में राजा सूरजमल के महल अगली सदी के हैं। फर्गुसन के अनुसार दीघ के राजा सूरजमल के महल में अन्य राजपूत रियासतों के किलेबंदी वाले राजमहलों की ठोस विशेषता की कमी है, किंतु अवधारणा की भव्यता और बारीकी के सौंदर्य में यह सबसे बढ़ चढ़ कर है। उदयपुर में संग्राम सिंह की छतरी, मथुरा और दीघ के मध्य गोवर्धन में सूरजमल की छतरी छत्रशाल और उसकी रानी कमलावती की छतरी, दिल्ली का जैन मंदिर, एलोरा में अहिल्याबाई का मंदिर और बंगाल में दीनाजपुर के पास कांता नगर का मंदिर, सभी अपने स्थापत्य में उसी हिंदू मुस्लिम शैली के तत्वों को प्रदर्शित करते हैं जो उनके पूर्ववर्ती भवनों में पाए जाते हैं। बंगाल का मंदिर अपने किस्म की ऐसी पहली हिंदू इमारत है जो मुस्लिम काल में बनी और जो गौर तथा मालदा की मस्जिदों की शैली की नकल थी। इसका निर्माण 1704 और 1772 ईस्वी के मध्य में हुआ था। यह काफी बड़ा है और वर्गाकार है। इसमें 3 मंजिलें हैं और तीसरी मंजिल के ऊपर मध्य में पिरामिड के आकार की बुर्जी है। पहली 2 मंजिलों में कोने में 4 अष्टकोणी बुर्जियां हैं। हर जगह नुकीली मेहराबे हैं। पूरा धरातल मिट्टी की आकृतियों से ढका हुआ है, किंतु कोई भी मूर्ति कहीं नहीं दिखती, किंतु वक्र रेखाएं आड़ी और खड़ी और मेहराब आकृतियां पूरे भवन को ऐसा रूप देती हैं जो बहुत सुखद है। इस शैली का प्रभाव 18वीं सदी में भारत में सभी कलाओं में फैला, यहाँ तक कि सुदूर नील इस संक्रमण से अछूता नहीं है। लेबोन के वर्गीकरण के अनुसार नेपाल के मंदिरों का तीसरा वर्ग पत्थर के मंदिरों का है, उससे जिससे चीनी प्रभाव विलुप्त हो गया है और जिस पर हिंदू प्रभाव दिखता है। इन मंदिरों में कुछ ऐसे हैं जिनमें मुस्लिम प्रभाव के चिन्ह देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए गुम्बद काठमांडू के मंदिर इसके उदाहरण है। 19वीं सदी के महल, छतरियां और मंदिर, चाहे वे पश्चिम में जामनगर में बने हो या पूर्व में कलकत्ता में बने हो या सिखों द्वारा पंजाब में बने हो या जैनों द्वारा मध्य भारत में बने हो, सभी हिंदू मुस्लिम वास्तु शैली के ही हैं। बनारस के का विश्वेश्वर मंदिर, अमृतसर में सिखों का स्वर्ण मंदिर, ग्वालियर में सिंधिया की मां द्वारा बनवाया गया मंदिर, कलकत्ता का पेगोडा, लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह का महल, काठियावाड़ में जामनगर के राव का महल, छतरपुर में छतरपुर के राजा का महल, अजमेर के सेठों का महाराजा रणजीत सिंह की समाधि, कोटा में महाराव उमेद सिंह का, अलवर में महाराजा बख्तावर सिंह का महल, उदयपुर में महाराणा संग्राम सिंह का महल, गोवर्धन में बलदेव सिंह और भरतपुर के राजा रणधीर सिंह के महल। वास्तव में 19वीं सदी में पश्चिमी शैली की इमारतों को छोड़कर वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हर इमारत हिंदू मुस्लिम शैली अपनाती है। यहाँ तक कि अहमदाबाद में हट्टी सिंह का जैन मंदिर भी, जिसे अपवाद माना जा सकता है, वास्तव में अपवाद स्वरूप नहीं है। जिसके बिना तराशे स्तंभ, बिना अलंकरण वाली दीवारें और चिकनी सतह का गुंबद प्राचीन आस्वाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, यदि ऐसी कोशिश की गई हो तो असफलता का और नए कला मूल्यों और सौंदर्य बोध की बाध्यकारी शक्ति का पर्याप्त प्रमाण है। इसके अतिरिक्त हिंदू मुस्लिम शैली ने केवल भारत की भवन निर्माण कला पर ही अपना आधिपत्य नहीं जमाया, बल्कि उसने सभी उपयोगितावादी स्थापत्य, घर, गलियां, घाटों पर वैसा ही प्रभाव जमा लिया था।